संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। समय सार कलश 106, 107, 108 इन तीन की चर्चा चल रही है और इसमें स्वामी जी का कोटेशन है 357 पेज पर, 357। ऊपर से ही है लेकिन मैं नीचे की दो पंक्तियों से पढ़ना चाहता हूं। ऊपर में वही बातें हैं जो अपन पहले व्याख्यानों में कह चुके हैं, इसलिए उसे छोड़ रहा हूं, आप लोग पढ़ लेना। नीचे की जो दो पंक्तियां हैं उसमें कलश टीका का अभिप्राय गुरुदेव श्री ने कोट किया होगा, वहां अपन ने गुरुदेव श्री को कोट किया, उस कोट में कोट होके आया है क्या? समय सार कलश में भी इसी श्लोक की टीका करते हुए श्री राजमल जी ने स्वयं शंका समाधान करते हुए लिखा है कि यहां कोई जानेगा कि शुभ अशुभ क्रिया रूप जो आचरण या चारित्र है वह जिस तरह करने योग्य नहीं है उसी तरह निषेध करने योग्य भी तो नहीं है। ये प्रश्न समझ में आया? इसमें दो ही दो बातें जोड़ी हैं कि शुभ और अशुभ, ये क्रिया और चारित्र, माने ये शुभ भाव रूप जो व्यवहार चारित्र है उसकी बात नहीं है, अशुभ को भी कह रहे हैं ना वो, माने शुभ क्रिया और शुभ भाव और अशुभ क्रिया और अशुभ भाव, इसका नाम चारित्र। चारित्र माने सम्यक चारित्र नहीं, अपन कहते जो चरित्र बन रहा है, ये जो ये भाव जो निरंतर हो रहे हैं, अकेले शुभ के बारे में नहीं है ये प्रश्न, और इसलिए वो शुभ धर्म व्यवहार धर्म रूप भी बात नहीं है। वो ये कहते हैं कि तुम ये कहते हो कि बंध का कारण आत्मा का आश्रय नहीं करना है और धर्म का अधर्म का कारण, और धर्म का कारण आत्मा का आश्रय करना है, और आश्रय माने श्रद्धा ज्ञान चारित्र की तरफ से, और वो ज्ञान रूप ही होता है ना। इसमें और विस्तार से अपन ने सामायिक शब्द से व्याख्या की ना, माने आत्मा का आत्मा के जानने रूप से प्रणमन, उसको तुम धर्म कह रहे हो, कर्म बंध के अभाव का कारण कह रहे, और वो शुभ भाव रूप जो क्रिया और शुभ भाव रूप भाव, इनको तुम धर्म होने का निषेध कर रहे हो। उसने बहुत गहराई से बात पकड़ी है। वो कहते क्यों निषेध कर रहे हो? क्योंकि तुम कहते हो ये भावान द्रव्यांतर स्वभाव हैं, ये जीव की क्रिया नहीं है, और जो वो पहला शब्द है ना, कौन सा है वो, स्वभाव रूप प्रणमन, उसके लिए शब्द है एक 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 द्रव्य स्वभाव, ये एक द्रव्य स्वभाव रूप नहीं है। तो जैसे जो क्रिया से बंध नहीं है, मोक्ष नहीं है, तो ये क्रिया तुम कहते हो कि इसलिए कि ये करने योग्य नहीं है, माने इससे धर्म नहीं होगा, सीधी सच्ची बात यह है। तो शिष्य मानो क्या कहता है कि फिर निषेध करने योग्य भी तो नहीं है, मतलब हमारे इससे कोई मतलब ही नहीं है। जैसे सुनो, अभी जरा प्रश्न समझना पहले, कि तुमने जो शुभ भाव किए अशुभ भाव किए और शुभ अशुभ क्रिया की, उससे हमें बंध नहीं होता, तो अब वो हम तुम्हारे उनको करें या नहीं करें, हम दोनों ही एक से हैं, तो हम कोई नहीं कहता कि तुम इनके शुभ भाव मत करो और कि इनके शुभ भाव करो। ऐसे हमारे शुभ भाव अशुभ क्रिया और अशुभ भाव अशुभ क्रिया कोई बंध के कारण नहीं है, तो फिर ऐसा कहो कि हमें इनके बारे में, मतलब हमें भी मत कहो, तो तुम तो यही कहते हो कि नहीं नहीं बिल्कुल करो, इससे कुछ नहीं होगा, ना धर्म होगा ना अधर्म होगा, ना पुण्य बनेगा ना पाप बनेगा, ऐसा कहते आ रहे अभी। इसमें प्रश्न है कि ठीक है फिर हम करें चाहे ना करें, तो तुम फिर निषेध क्यों करते हो? तुम करने का उपदेश मत दो, उससे कुछ नहीं होगा। जब उससे कुछ होता ही नहीं है तो निषेध तो इसलिए किया जाता है कि उससे कुछ हमारे गड़बड़ हो, तो तुम निषेध भी क्यों करते हो? जैसे अभी और सरल करूं कि कोई एक कहे कि जो तुम टोला मन स्मारक भवन में प्रवचन सुनने जाते हो उसे कुछ नहीं होने वाला है, तुम्हें कुछ फर्क नहीं आएगा, तो वो क्या गला पकड़ता है? तो कुछ नहीं होगा या नहीं कुछ नहीं होगा, सचमुच कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो फिर हम जाएंगे तो कुछ बुरा भी नहीं होगा, फिर आप रोकते काहे को, फिर जान दो ना। अब आया समझ में कुछ? मैंने तुम उसको करने रूप करने से कुछ नहीं होगा ये कहते हो, तो अगर कुछ होगा ही नहीं तो वहां जाने से खतरा क्या है? फायदा नहीं होगा ना, तो कुछ लेकिन कुछ नहीं होगा ना, माने फायदा और नुकसान कुछ नहीं होगा, ऐसा अर्थ हुआ उसका? तो हमें जान दो ना खूब, तो फिर तुम हमें वहां जाने से रोकते क्यों हो? फिर पढ़ता हूं देखना, कलश टीका की कुछ टेढ़ी भाषा है। यहां कोई जानेगा कि शुभ अशुभ क्रिया रूप जो आचरण या चारित्र है वह जिस तरह करने योग्य नहीं है उसी तरह निषेध करने योग्य भी तो नहीं है। फिर अभी जरा और इसमें थोड़ी बारीक बात है मेरे दिमाग में से जो मैं पूरी तरह से कह नहीं पा रहा हूं। वो क्या कहते हैं, फिर तो बास किया तुम, तो फिर तो बास करने से कुछ नहीं होगा माने कर्म नहीं कटेंगे, कुछ नहीं होगा माने कर्म नहीं कटेंगे, तो कुछ नहीं होगा ना, तो कर्म कटेंगे भी नहीं, बनेंगे भी नहीं। तो कुछ लोग तो ये कहेंगे नहीं, 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 नहीं कर्म बनेंगे तो, लेकिन कटेंगे नहीं, तो ये लगता है कि ठीक है कि तुम अब करो मत ऐसा नहीं इसको। लेकिन जब तुम कहते हो न कटेंगे न बनेंगे और कुछ होगा ही नहीं, परद्रव्य न बंध का कारण है न मुक्ति का कारण है, तो फिर परद्रव्य में जाने का निषेध क्यों करते हो? जान दो ना, खूब परद्रव्य को भोगे और कुछ होगा ही नहीं, उससे तो कुछ होना ही नहीं है, तो ये तो विषय भोग का तो निषेध करते हो तुम, और शुभ भाव का भी निषेध करते हो मोक्ष मार्ग में, तो जब कुछ नहीं होता है तो निषेध करने की भी जरूरत नहीं है। ये है असली प्रश्न। क्योंकि अशुभ में तो वो मानता था कि अशुभ से पाप बंद होगा, इसलिए आप निषेध करते हो, ये तो ठीक हो गया। अच्छा अब तो शुभ के मामले में तो आप कहते हो कुछ नहीं होगा मैंने धर्म नहीं होगा, तो धर्म नहीं होगा ना तो अधर्म भी नहीं होगा, जब कुछ नहीं होगा मतलब यह है कि धर्म अधर्म कुछ नहीं होगा, तो आप जो हो रहा होने दो, तो तुम ना करने की प्रेरणा दो और ना नहीं करने की प्रेरणा दो, माने निषेध भी क्यों करते हो? यदि वो जिस तरह वह करने योग्य नहीं है उसी तरह वह निषेध करने योग्य भी नहीं है। हम कहे पूजा पूजा से तुम्हें कुछ फायदा नहीं होने वाला है, तो हमको नहीं पुण्य तो बनता है, हाँ पुण्य तो बनता है, तो हमको हो गया ना फायदा, पुण्य बनना कोई फायदा ही नहीं है, इसलिए कहते कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन तुम तो अब एक कहने लग गए कि वो पुण्य पाप बनेगा ही नहीं, अंतर समझ में आया कि नहीं आया? सारा देश हम पर ये आरोप लगाता है कि तुम पुण्य का निषेध करते हो, और इसलिए करते हो कि पुण्य से कर्म का बंध होगा, कर्म कटेंगे नहीं, आ गया? और वो लोग कहते हैं कटेंगे, एक वो झगड़ा हो गया एक लेवल का, अब ये अपर लेवल का झगड़ा है, इससे ये झगड़ा नहीं है, कि तुम कहते हो कि परद्रव्य की क्रिया होने से न बनेगा न कुछ नहीं होगा उससे, न पाप बनेंगे न पुण्य बनेंगे, कुछ होगा ही नहीं, नो रिएक्शन। तो वे कह रहे हैं कि फिर तुम मना क्यों करते हो, खान दो ना खूब। ये प्रश्न है और उसका उत्तर देखो। उसका समाधान इस प्रकार है कि निषेध करने योग्य है, क्योंकि उसका व्यवहार चारित्र नाम होते हुए भी वह दुष्ट है, अनिष्ट है और घातक है। देखो कितने क्या लिख रहे हैं, ये पुण्य के लिए लिख रहे हैं, इसलिए मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। अगुरुदेव ने कूट किया, वो दुष्ट है, अनिष्ट है और घातक है। इस कारण विषय कसाई की तरह ही क्रिया रूप चारित्र भी निषिद्ध है। अब कुछ और कुछ कह रहे हैं ना, कुछ अलग की चीज कह रहे हैं ना, मतलब इसको हल्के तौर से मत लो। मैं इतनी देर तक इसी पे आपको ठहराए हूं इसलिए कि वो आपके अंदर घुसे। मैं तो थोड़ी भाषा बदलता भी हूं, गुरुदेव तो भाषा ही नहीं बदलते हैं। अच्छा तो व्यवस्था भी पढ़ते हो, देखो देखो लिखा ना, क्रिया रूप चाहे तो निषिद्ध है, विषय कसाय रूप की तरह, विषय कसाय की तरह ही, ये इतना स्पष्ट लिखा है। कहीं कदाचित गुरुदेव श्री या कोई वक्ता आपको ऐसा निषेध करता हुआ दिखाई दे तो आपको लगे कि ये एकांत है, तो समझ लेना कि वो एकांत क्यों है, क्योंकि ये तो वो राजमल जी की लिखा है उसका अर्थ कर रहा है। अब आप राजमल जी को तो रखेंगे नहीं, और पंडित रघुमचंद जी कह रहे थे और देखो हमने उनके प्रवचन में सुना है और ये वो उनका गलत है। तो राजमल जी की बात आए तो फिर पंडित होमचंद गलत तुम नहीं कहोगे, तो उसका अर्थ कर रहे थे, तो राजमल जी भी पंडित ही है, तो फिर कोई आचार्य ने ऐसा कहा होगा वो आएगा वाक्य, तो आचार्य भी कह देंगे जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। मैंने बात तो वही है ना, तो कहते ऐसा तल्ला मत लगाओ। वो पंडित जी राजानंद जी कहते कि नहीं वो निषेध कर, अरे ये वो बात क्या श्रद्धा की लेवल पर है कि तुम श्रद्धा के लेवल पर किसी ना किसी रूप में मुक्ति के मार्ग में उसको उपाधे कोई किसी न किसी तुम्हारे हृदय के कोने में पड़ा है, और हमें पूरा पुण्य पाप अधिकारी इस काम के लिए लिख रहे हैं कि वो तुम्हारे हृदय के हर कोने में से वो बात निकल जाए, वो कहीं नहीं आए। आपको ये लगता है कि हमने तो बहुत अपेक्षा लगा के कही थी और फिर जो ऐसी जिद क्यों कर रहे हैं, फिर उस पर क्यों अड़े हैं, क्यों वो अपेक्षा लगाई, वो तो आपने शास्त्रीय भाषा बोली, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे तुम्हारे हृदय के भीतर किसी कोने में वो जो छिपा हुआ है उसके प्रति उपादेय बुद्धि और मुक्ति के मार्ग का कारण बने की बुद्धि, उसका निषेध कर रहे हैं। यदि वो बुद्धि तुम्हारी निकल जाए और तुम यदि यही कहने लगोगे तो ही हम ये कहेंगे कि नहीं नहीं इसमें तो क्या है, व्यवहार से तो है ही, वो होता ही है, करना चाहिए कहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और वो विषय कसाय में प्रवृत्ति करता है उसे तो अच्छा ही है, विषय कसाय में प्रवृत्ति नहीं करे तो आप ही को हम ये समझाएंगे। लेकिन जब तक वो अंदर का चोर नहीं निकला है तब तक क्यों कि वो पक्ष वही पक्ष तो पड़ा है, उसको ही हम मुख्य कर दें, उसको वो अपेक्षा तो बताने की यहां जरूरत ही नहीं है, उस अपेक्षा की वजह से तो तुम्हारे अज्ञान की सुरक्षा हो रही है क्या। देखो अब कहते हैं इसका अर्थ मैंने बता दिया, मैं समझता हूं। अब कहते हैं कि मोक्ष हेतु त्रोधायित्वात्, ये सब अब कांजी स्वामी का है, वो ऊपर खत्म हो गया वहां तक कण का कलश टीका का। मोक्ष हेतु त्रोधायत्वात् अर्थात वृतादि रूप जितना शुभ कर्म है वह सब मोक्ष के कारण के विरुद्ध स्वभाव वाला है, इस कारण उस कर्म का निषेध किया गया है। वो विरुद्ध स्वभाव वाला है और तुम विरुद्ध स्वभाव वाले को रखना चाहते हो, कहे वो इतना सारा की बात, इतना सारा वो राग तो भाई इतना नहीं, 96,000 पत्नियां इस राज शादी करने का विकल्प उतना भी चलेगा, लेकिन राग में उपादेय बुद्धि इतनी भी नहीं चलेगी। एक रुई के ढेर में एक कणिका भी आग नहीं चलेगी। क्या समझे ना? क्योंकि पूरी रुई को भस्म करने के लिए वो पर्याप्त है, पूरी रुई को आग में बदल देगी। ऐसे ही ये मिथ्यात्व में, ये मिथ्यात्व जरा भी उसमें उपादेय बुद्धि रूप मिथ्यात्व बना रहा तो वो कितना अनर्थकारी है, अभी तुम्हें उसकी कल्पना नहीं है। अब दया आने लगती है, बेचारे को थोड़ी को इतना तो बचे नंदो, कुत्ता हो बिल्ली हो कहते मारी डालोगे क्या, कुछ भी नहीं दोगे खाने को। हमको राग पे भी दया आती है क्यों? और उस दया में हम उसे धर्म मानना, ऐसे हमने समझते उसकी दया पालन करी क्या, कि उसे इतना कहीं किसी कोने में किसी अपेक्षा धर्म कह दो तो वो हमारी, अब हम बेचारा जिंदा रह जाएगा है? तो तुम्हें जिंदा रखना है राज को, राग को। अभी आचार्य ने आगे गाथाएं लिखी हैं, परमाणु मित्र यम पिए रागादीना में विद्यते जस, परमाणु मात्र भी राग जिसके विद्वान है वो सब्बागम धरो भी सर्वागम का धारक होए तो अभी उसे मोक्ष नहीं होगा। अब सर्वागम का धारी के सौधर्म इंद्र भी सर्वागम का धारी होता है, जानते आप, वो भी सुप्त केवली होता है, द्वादश अंग का पाठी होता है, और उसे रंज मात्र संयम नहीं होता है। तो तीन कसाई के उदय रूप इतना राग विद्यमान है। अब देखिए राग तो इतना विद्यमान है और वो कहते सब्बागम का धारी हो और परमाणु मात्र भी राग हो तो उसे मोक्ष नहीं होगा। तो भैया सब्बागम का जो धारी होता है उसे वो श्रद्धा में परमाणु मात्र राग होता ही नहीं है, फैक्ट तो ये है। तो ये ने ऐसी क्यों लिखी? अरे ये तो तुम्हें कल्पना कराई। कैसी कल्पना कराई? सक्को जम्बू दीपम। ये सक्को जम्बू दीपम क्या है? कि इंद्र में कितनी ताकत है कि वो जम्बू दीप को ऐसा रखकर ऐसा पलट दे, अकेले सुमेर पर्वत को नहीं पूरे जम्बू दीप को उलट सके। सक्को जम्बू दीपम, जम्बू दीप को पलटने की ताकत शक्र में इंद्र में है। तो कोई ने कहा कि कोरी कोरी ताकत ही है कहने की कि कभी पलटा भी है एकाद इंद्र ने। तो आज तक अनंत काल से आज तक कोई ऐसा उदाहरण नहीं है और अनंत काल तक होगा भी नहीं कि कोई इंद्र जम्बू दीप को पलटे। तो कोरी कल्पना लोग में उड़ने से क्या फायदा, ऐसा लिखने से क्या फायदा कि भाई हम तो इंद्र के अंदर की शक्ति का नाप का बता रहे तुम्हें, उसका अंदाजा लगवा रहे, उसी ताकत का तुमको अंदाजा लगवा रहे हैं हम, ऐसा होने की बात नहीं है। अब ऐसी है और कभी गुस्सा आ जाए तो पलटा ही देना। तो कहते हैं भगवान गंजे को नाखून नहीं देता, मुझे कहावत है ना लोक में, गंजे को नाखून नहीं देता है, समझ में आया ना, कि नाखून आए बड़े बड़े और गंजा सिर हो और उधर खुजली हो जाए तो वो खुजाए बिना रहेगा नहीं तो खून खतर हो जाएगा। तो कहते हैं जिसकी इतनी कसाय तीव्र होती है कि वो उसको पलटने का भाव आ जाए तो ऐसे आदमी को इतनी शक्ति होती ही नहीं है। इसका मतलब गंजे को नाखून नहीं देता, मतलब समझ जाए ना, माने वो कसाय उसकी इतनी मंद होती है कि उसे कभी भाव आएगा ही नहीं, और भाव नहीं आएगा तो पलटेगा भी नहीं। तो फिर काय को कहा जो हो गई नहीं कभी, काय को कहा? तो उन्होंने कहा कि हमें शक्ति का ज्ञान कराने के लिए कहा, फिर खत्म। ऐसे ऐसे कथन जनमानी में सैकड़ों हैं और कईयों को तो मुझे भोगना पड़ा है बुरी तरह, मैं बताऊंगा, अभी चिंता नहीं करना। ये सबको दमो दीपम है ना, कि वो दमो दीप को पलट सकता है, ये जो कभी कभी नहीं होगा। ऐसे ही परमात्म प्रकाश में ऐसा लिखा है कि केवल ज्ञान में इतनी ताकत है कि ये लोकालोक है ना, वो उसको जानता है। ऐसे अनंत लोक होते तो उन्हें जान लेता, नहीं बताया। ऐसा लिखा है परमात्मा प्रकाश ने। और उदाहरण क्या दिया, बेल का, कि बेल पेड़ के सहारे ऊपर चढ़ती है, तो जितना बेल पेड़ होता है उतना चढ़ जाती है, और पेड़ नहीं है खत्म तो ऊपर नहीं जा सकती वो। तो वो कहते हैं कि यदि पेड़ इससे दूना ऊंचा होता तो वो बेल उससे दूनी चढ़ जाती है, ये उसमें लिखा है। इसी सभा में, इसी हॉल में मैं ये बात समझा रहा था, क्या कि ये वो ऐसा ही है जी, वास्तव में केवल ज्ञान में अनंत लोक को जाने ऐसी ताकत नहीं है। तो ये लिखा है ना कि है, वो तो तुम्हें अंदाजा कराने के लिए ऐसा उदाहरण दिया है। तो यहां एक राजमल करके मोक्षु भाई थे कुटामन के, और वो सोनगढ़ बहुत 6-6 महीना रहते थे, और गुरुदेव के भी मुंह लगे हुए थे, ख्याल में आए ना। वो मेरा प्रश्न सुन रहे थे तो उन्होंने साफ विरोध किया, कहीं नहीं आप गलत बोल रहे हैं, परमात्म प्रकाश में लिखा है, ये लिखा है, वो लिखा है। मैंने कहा भाई परमात्म प्रकाश हमने पढ़ा है, और हमने उसे उदाहरण दे के ये बात हम कह रहे हैं। वो चुप हो गए, तो वहां से सुन गए तो वहां जाके उन्होंने कह दिया, वहां सारी सभा में कह दिया, गुरुदेव से कह दिया कि डॉक्टर हुकुमचंद भारत जी नहीं मानते, और जबकि ये परमात्म प्रकाश में लिखा है। गुरुदेव जी ने कहा 15 दिन बाद वो आने वाले हैं, तब बात करेंगे, जब तक चुप रहेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, जब तक चुप रहेगा। ऐसे कई केस हुए मेरे साथ, बड़ी अदालत है, सुप्रीम कोर्ट में कई दफे आया हूं। अब क्या कहें, सुप्रीम कोर्ट ही खत्म हो गया। गया मैं 15 दिन बाद, और गुरुदेव सिंह ने मेरे को पूछा कि ये क्या क्या बात थी, क्या बात थी। मैंने कहा ये बात थी कि ये तो उसकी शक्ति का आपको समझ में नहीं आता, तो आपने इतनी शक्ति, तो मैंने कहा शक्ति है ही नहीं, क्यों नहीं है, कि इसका तो अर्थ ये हो गया कि अनंत लोक नहीं है, इसलिए केवल ज्ञान को अपनी शक्ति दिखाने का मौका नहीं मिला। तो वो केवल ज्ञान अभी जो उनकी पर्याय है वो पूर्ण विकसित पर्याय नहीं है, समझ रहे ना, क्योंकि उसे पूर्ण विकसित पर्याय रहे ही नहीं, पूर्ण विकसित तो अल्प विकसित, तो ये केवल ज्ञान तो पूर्ण विकसित पर्याय है, तो पूरी विकसित हो ही गई, तो जितना लोक है उतना जाना, और बाकी ये जाना कि नहीं है। तो अनंत लोक होते तो, अब ये कल्पना ही है ना, वास्तव में तो प्रदंसार में कितना साफ लिखा है भाई जी, कि वो लिखा ना अम्मा अप्पा सब गयो, जितने ज्ञान है उतना गे है, जितना गे है उतना ज्ञान है, कदाणम अप्पा गेयम क्या आदाणान पमानम राणम ने अपमान मो दिठम रेयम लोया लोयम तम महा अप्पा हु साब गयम। मैंने गुरुदेव को एक गाथा सुनाई, आत्मा तो ज्ञान प्रमाण है, और ज्ञान कितना है, गे प्रमाण है, और गे कितना है, लोका लोक बस खत्म, तो उतना ही हुआ आत्मा, उतना ही केवल ज्ञान हुआ। तो फैक्ट तो यही है कि वो ज्ञान की पूर्ण विकसित पर्याय है, ये होता तो। ऐसे कथन आगम में भी बहुत आते हैं, लेकिन वे सिर्फ महिमा वाचक कथन है, वो फैक्ट को बताने वाले कथन नहीं है। हमारी एक आदत पड़ गई है ये बताने के लिए। बहुत से लोग मेरे से कहते हैं यदि आप राजनीति में होते तो, यदि आप फलाने में होते तो, के होते तो के? वो कैसे होते, होते जो हैं वो ही होते ना, ये तो अनंत काल पहले हम केवल ज्ञान में, अनंत केवलियों के केवल ज्ञान में झलक गया था, क्यों कि हम क्या होंगे, यदि ये कल्पना ही करना है कि ये नहीं होते और होते तो, तो नरक में जाते। ये क्यों नहीं समझ में आता है? अब समझे ना, यह क्या नहीं है? क्योंकि नरक में नहीं जाना था, चले होते कहते। आपको ऐसा लगता है कि हमने बहुत बड़ा फील्ड वो छोड़ दिया है और हम कहां फंस गए? बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कहां फंस गए। बहुत पुरानी बात है, भगवान अशोक नगर में रहता था मैं जब, तो वहां पर एक महंत चेतम्बरों के घर तीन चार थे और दिगंबरों के तो हजार घर थे। तो चेतम्बर लोग दिगंबरों में ही आते रहते थे। तो एक चौथमल जी करके थे और उनके लड़के थे कोचेटा, तो वो मेरे साथ पढ़ाते थे कॉलेज में, स्कूल में। वो हिंदी के प्रोफेसर थे, मैं भी हिंदी पढ़ाता था, संस्कृत पढ़ाता था। तो और वो हमारे प्रवचन में आया करते थे, तो वो मेरे से बार बार कहते थे, वो उसी टाइप के थे, तो आप डॉक्टर साहब कहां फंस गए हैं? कभी वहां भी झगड़ा धंधा तो होते ही थे ना, और बुंदेलखंड तो इस बात के लिए प्रसिद्ध है, बहुत होते थे कि तुम इन बनियों के बीच में फंस गए हो। अरे तुम जरा, तुम्हारा बड़ा क्षेत्र होता तो ऐसे हो जाता, ऐसा हो जाता, ये कहते तुम खोल दो इसे, इस बारे को तोड़ दो और आ जाओ देखो कैसे ये सारा अशोकनगर तुम्हारे ऊपर नहीं झूमता है और इतने लोगों के हित नहीं होते थे। तो मैं कहते क्या कह रहे हैं आप? मैं लोग ज्यादा इकट्ठे हो जाएं इसके लिए जो मुझे परम सत्य प्राप्त हुआ है उसे छोड़ दो। अरे एक भी आदमी मेरे साथ नहीं होगा तो भी मैं किसी कीमत पर इसे नहीं छोड़ूंगा, और सारा विश्व आ जाए तो भी मैं नहीं छोड़ूंगा। एक दफा तो मैंने सुनाया आपको, मैं एक वकील बनते बनते कैसे बचा हूं, सुना ना? तू सुना कहेंगे नहीं सुना? है? क्योंकि लोग मेरे से उस वक्त जब मैं वहां पर पढ़ाता था तो ये कहते थे, प्रवचन करता था कि तुम यदि वकील होते तो बहुत टॉप के होते। तो उनकी सुनते सुनते मेरे पर धीरे धीरे कुछ असर हो गया। सच्ची घटना, असर तो होता है, कई दफे हुआ ऐसा, एक दफे नहीं, असर हो गया। तो मैं तो तब शास्त्री था, फिर मैंने मैट्रिक किया, फिर इंटर किया, फिर बीए किया, अब मैं एलएलबी करना चाहता था। तो उस गांव में तो एलएलबी की क्लास नहीं थी, तो उसके पास में एक घंटा दूर गुना नाम का गांव है, तो वहां पर एलएलबी की क्लासें चलती थी। तो मैं वहां भर्ती होने गया, मैं एक दो साल से गवर्नमेंट से छुट्टी लेकर और एलएलबी करूंगा। तो मैं वहां से, एक घंटा ट्रेन का रास्ता था एक घंटे का, और दो स्टेशन बीच में पड़ते थे, 20-20 मिनट में आते थे, एक पगारा, एक साड़ोरा और फिर गुना। तो वहां पर मैं बैठा था, डिब्बे में बैठा, और दो छत्री बड़ी बड़ी मूछ वाले आपस में आकर के बैठे और बहुत गर्मा गर्म चर्चा कर रहे थे। मैं साले को जान से ना मार दूं तो मेरा नाम फलाने सिंह मलखान सिंह नहीं, और मैं ऐसा नहीं कर दूं तो मैं ऐसा कर दूं, मैं ऐसा नहीं कर दूं, वो बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था। तो दूसरा बोला कि ऐसा मत करना, नहीं जिंदगी भर जेल में सड़ेगा, फांसी पे चढ़ेगा। वो उसे समझा रहा था कि ऐसा मत करना, बोले मैं किसी की परवाह नहीं करता, मैं हत्या करने के पहले नाम लेके बताता हूं कि पूरन चंद वकील को वकील कर लूंगा। पूरन चंद वकील मेरे मित्र ही थे और वो वहां रिश्तेदार भी थे, वो वहां में फौजदारी केस के बहुत अच्छे वकील माने जाते थे। ये ना तुम्हें आशा, आशा है ना शांति जी की मिसेज? तो इसके नाना के कुछ उसके थे, ऐसे जमाई, नाना के जमाई थे वो, रिश्तेदार में भी थे। तो वो ऐसा कह रहा था, मैं पहले जाके उसे वकील करता हूं क्योंकि सामने वाले उसे वकील निकल लें और फिर हत्या करता हूं। तो मेरे तो पैरों के नीचे जमीन खिसक गई, उनकी अच्छी बकालास देख देख के मेरे मन में पानी आता था क्या अब भविष्य में लोग ये कहेंगे क्या कि मैं किसी की हत्या करने से नहीं डरता हूं, मैं पहले जाके हुकुमचंद को वकील करूंगा। तो ये तो हत्यारों को अभयदान हो गया क्या? यानी मैं अमृतचंद और कुंद कुंद की वाणी छोड़कर कहां जा रहा हूं, ये जहर पीने जा रहा हूं मैं पूरे गुना तक नहीं गया, बीच के स्टेशन पर ही गाड़ी छोड़ दी और उतर गया और दूसरी गाड़ी आती थी उसमें बैठ के लौट के घर आ गया, बच गया मैं वकील बनते बनते। है क्या? मैंने उन वकील साहब बेसाद अभी हैं कि नहीं है, मैं नहीं, मुझे नहीं पता क्यों जीवन है कि हैं, अभी हैं, अभी भी हैं, वो होंगे 80-90 वर्ष के क्या? ये काम क्या है? एक और वकील वहीं ऐसे थे, उनका नाम जमुना लाल जी था, वो भी मेरे रिश्तेदार थे। तो उनके घर 3 मंजिल का बहुत बढ़िया मकान था बीच बाजार में, और वो अपना ऑफिस अपने मकान में नहीं खोल के और एक ऐसी तीन थप्पड़ में ऐसा गांव के बाहर, और वहां उन्होंने ऑफिस खोला, वहां वो ऑफिस में जाके बैठते थे। गर्मियों में 3 बहुत तपता था, तो मैंने उनसे कहा कि वकील साहब तुम्हारे 3-3 मंजिल का मकान है, बढ़िया एयर कंडीशन जैसा बीच बाजार में, उसमें तुम क्यों नहीं बैठते किराए के लोग में? वो किराए से दे दिया, क्यों तो इधर आगे इसमें बैठते हो? बोले आप नहीं समझ सकते हो। मैं समझा था ना, पूछ रहे तुमसे। तो बोले कि चोर डाकुओं को मैं अपना घर नहीं बताना चाहता। तो नाम लेके बोल रहा हूं, और टीवी में कैद हो रहा, टीवी में आएगा, और वो और उनके परिवार वाले पोते नाती पोते सब होंगे। अभी इस देश में क्या जाएंगे क्या? ज्यादा मुझे पता नहीं है कितने हैं, लेकिन हैं। तो मैंने कहा कि कितना सब बढ़िया सत्समागम है, यानी वकील बने तो कौन लोग अपने पास आएंगे? हत्यारे, चोर, डाकू, भाई मेरा घर देख जाएंगे तो कल मेरे ही घर में चोरी करेंगे। ये वकील लोग घर का नंबर किसी क्लाइंट को नहीं देते हैं, ऑफिस के नंबर देते हैं और कहते हैं ऑफिस में ही आओ, मोबाइल तक नहीं देते हैं, तुम ऑफिस में ही आके बात करो, वहीं उसी टाइम पे बात करो, नहीं तो दिन भर में परेशान हो जाएंगे, चक्कर करेंगे। अच्छा वकील बनने का मतलब क्या है? अच्छा डॉक्टर बनने का मतलब तो मैंने कई दफे आपको बताया है, अच्छा इंजीनियर बनने का मतलब भी मैंने कई बार आपको बताया है। ये हमारे बता रहे थे ना सुमत जी के विद्यार्थियों को, कहने का क्या भविष्य है? मैंने कहा बेटा डॉक्टरी में जाओगे तो जिंदगी भर दूसरों के सड़े गले अंग देखना पड़ेंगे। क्या मेरा बेटा तो यूरोलॉजिस्ट है। कि क्या होता है यूरोलॉजिस्ट? कि पेशाब की बीमारियों का स्पेशलिस्ट, लाइन लगती है, करता क्या है? रोजाना सुबह से लेकर शाम तक भले ही 500 रुपया फीस लेता हो, मुझे तो रेट मालूम नहीं है, सुमित प्रकाश जी ने बताई थी कल। क्यों 10,000 रुपया लेके उठता हो, लेकिन इतना सुबह देने में भगवान के दर्शन की नहीं, लोगों के सड़े गले अंगों का दर्शन होता है, वही देखते रहना पड़ता है। जिस अंग का नाम लेने में हमें शर्म आती है, जिस अंग को हम छिपा के रखते हैं कि कोई देख ना ले, क्यों दूसरों के उन अंगों को उसे देखना पड़ता है, और बेबी वो अंग कैसे सड़े गले अच्छे कौन दिखाता है? विचार कर, हमारा लड़का तो वो है, वो खून पेशाब की जांच करने वाले क्या बोलते हैं, पैथोलॉजिस्ट है। 1,000 लोगों की आते हैं, सब जांचें होती हैं लेटरिन की, तो क्या करता है सुबह से लेकर के दूसरे की गंदी लेटरिन को, क्यों कौन कीटाणु कितने हैं, वो देखते देखते गिनता रहता है। बोलो भगवान आत्मा को छोड़कर क्यों पंडित ऐसा डॉक्टर बनना है? क्या कैरियर है? क्या कैरियर है? डॉक्टरों का कैरियर ये है, वकीलों का कैरियर ये है, इंजीनियरों का कैरियर ये है, आजीवन का जंगलवास वनवास। रामचंद्र को तो कितने 12 या 14 वर्ष का ही मिला था, है ना? 17,000 वर्ष की उम्र में कुल 14 वर्ष कितने से होते हैं? 5 मिनट जैसे। अपन को जंगल में 5 मिनट रहना पड़ेगा तो क्या फर्क पड़ता है? सत्रह हजार वर्षों में शांतिलाल जी, 14 वर्ष कितने से होते हैं, लेकिन इंजीनियरों का तो आजीवन वनवास है। क्यों? बड़े बड़े बांध बनाएंगे। बांध कहां बनते हैं, शहर में कि जंगल में? वो जंगल में जाकर के रहना पड़ेगा। जब बांध बन जाएगा तो वहां बहुत बढ़िया नगर बस जाएगा और इंजीनियर साहब का तबादला हो जाएगा कि दूसरी जगह बांध बनाने जाओ, उन्हें फिर जंगल में ही रहना पड़ेगा। वहां क्या करेंगे फिर, वहां के बन गया बस बांध, अब उनका क्या काम है, बोलो, है क्या नहीं? ये भाई, और ये जो इसका क्या भविष्य है? अलौकिक दृष्टि से तो मोक्ष भविष्य है ही, अलौकिक दृष्टि से भी हजारों लोग नीचे बैठे होंगे और हम ऊपर टेबल कुर्सी पे बैठे होंगे। और सेठिया आके यहां बैठना चाहे ना तो 5 मिनट के 5 लाख से कम नहीं लगते हैं। क्यों? और हम घंटों मुफ्त में बैठे रहते हैं। बोलो क्या लोग दृष्टि से के भविष्य क्या खराब है? सब हाथ जोड़ के सुनेंगे और नहीं जोड़ के हाथ सुनेंगे तो उन्हीं को कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। हम क्या करें, हमारे आपका क्या बिगड़ता है? विद्या तो विनय से ही आती है ना, विनय पूर्वक ही सुनना पड़ेगा कि नहीं सुनना पड़ेगा? तो लौकिक दृष्टि से भी कौन सा खराब काम है, इतना बढ़िया काम है। काम के लिए पैसों से थोड़ी सुना जाता है, और पैसों की भी इसमें कोई कम नहीं है। मैं उसमें लुभाना नहीं चाहता तुम्हें क्या, लेकिन फिर भी हमारे कई विद्यार्थियों को 1-1 लाख रुपए महीना मिल रहा है। और मुझे उनकी नहीं कह रहा हूं कि जो वे बन गए हैं कौन, कंप्यूटर इंजीनियर के क्या क्या बोलते हैं तुम बोलो, MBA चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनकी नहीं कह रहा हूं मैं, उनके तो मैं देखता ही नहीं उनकी तरफ तो। लेकिन जो पढ़ाते हैं, जैन दर्शन पढ़ाते हैं, प्रवचन सार पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में, तो हमारे श्रेयांश जी हैं, ये पीयूष के बहन हुई, यहीं पर 1 लाख रुपए महीना मिलता है, एक प्रवचन सार पढ़ाते हैं। वीर सागर है, अनेकांत है, सुदीप है, कई हैं। आदि जी आप नहीं थे, एक दिन मैंने यहां कहा था कि दुनिया में सबसे भाग्यशाली हमारे विद्यार्थियों में 500,000 विद्यार्थी जो भी निकले ना, तो कौन है पता है? शांति पाटिल सबसे बड़ा भाग्यशाली मेरे विद्यार्थियों में है। तो क्यों? क्योंकि उसे आत्मख्याति पढ़ाने को मिलती है। और मैं सुनता हूं कितनी अच्छी आत्मख्याति पढ़ाता है वो कल्पना नहीं है। वो आत्मख्याति पढ़ाने का सौभाग्य उसे मिलता है। इन नैतिक पढ़ाने का सौभाग्य जिसे मिलता है, तो हमारे भय कुमार जी हैं, संजीव गोधा है और भी है। मेरे कहने का मतलब ऐसे लोग मैं इनको सबसे बड़ा भाग्यशाली मानता हूं। किसको कितनी तनख्वाह मिल रही है उसकी कोई कीमत नहीं है। क्या होती तनख्वाह फनखा में, हम लोग भूखों ही मर गए? हमने जिंदगी भर जनवाणी की आराधना की, पढ़ा पढ़ाया, लिखा लिखाया, तो हमें तो भूखे मरे ही नहीं। जितने हम बीमार पड़े हैं वो ओवर डाइटिंग से हुए होंगे, अंडर डाइटिंग से नहीं हुए। खाने की कमी से हम नहीं बीमार हुए, ज्यादा खाने से हुए। क्यों? कि परद्रव्य का आश्रय लिया ना, तुम्हारे घर में जो खाया है और तुम जबरदस्ती ज्यादा खिलाते हो उससे इतने बीमार पड़े हैं। अपने घर में तो हम एक रोटी खाते हैं, उसे गड़बड़ होती नहीं है, हो ही नहीं सकती है। घर वाले इतनी ज्यादा जबरदस्ती कर नहीं सकते ना। मैं सचमुच सच्चे हृदय से बोलता हूं, मुझे तुम विद्यार्थियों को तुम आगे भर्ती हो जाओ इसलिए बोलता हूं, इस धोखे में मत रहना। जब बेटा आओगे मेरे पास इंटरव्यू देने तब मैं रिजेक्ट करूंगा तुम्हें, ये मना नहीं रहा हूं, लेकिन ये फैक्ट बता रहा हूं सच्ची बात क्या है। क्यों सुमन जी, इससे बड़ा भाग्य दुनिया में कोई नहीं है। मतलब क्या फ्यूचर है आखिर, इसमें फ्यूचर क्या है? मैंने कहा फ्यूचर सीधा मोक्ष फ्यूचर है। बोलो, छोटी मोटी बात मैं नहीं करना चाहता हूं, ये मोक्ष फ्यूचर है इसका। हम तो पहला सूत्र पढ़ाते हैं, संबंध संज्ञान तारे प्राणी मोक्ष मार्ग, ہم تو موکش کا مارگ بتانے والے لوگ ہیں, جن کو ایک لوکک فیوچر چاہیے, نہ بے نحال ہونے والے ہیں اور نہ بے ہمیں نحال کرنے والے ہیں. مجھ میں آ جاتی ہے, آپ تو بول دیتا ہوں. ایک دفعہ شانتی کو بھی پاگل پن سوار ہوا تھا, پر میرے پاس استعفیٰ لے کے آ گیا تھا. میں نے اتنا ڈانٹا اور پھر جا چلا بھی, جہاں جانا ہو جانا, کیا ہے کیا کرنا, کیا کہاں جانا, کیا کرنا, بس پیسے ملیں گے. جیسے میرے کے کسی کونے میں پڑا رہے گا, سڑے گا وہاں, پھر نہیں پڑی اس کی ہمت. راجا سورگ میں ہے, سروا سدھی میں ہے, سروا سدھی پڑھاتا ہے, سروا سدھی میں. سچ مچ وہ بھاگیہشالی ہیں جنہیں کند کند امرت چندر پوجیہ پاد اکلنگ دیو ودیانند ایک آچاریہ پڑھانے کو ملتے ہیں. میں تو مولانا ودیالیہ سے پڑھ کے نکلا تھا, تو پھر ایک جین میں اس کا ہیڈ ماسٹر ہو گیا تو ہندی سنسکرت پڑھاتا رہا, مجھے مزہ نہیں آیا. تو میں اشوک نگر میں ایک پاٹھشالا میں چلا گیا, تو وہاں پر کوئی پڑھانے کو نہیں ملتا تھا نا, تو میری برابر کے عمر کے لڑکے تھے, چار لڑکے آتے تھے میرے پاس, دو کا نام تو پون تھا, ایک کا نام نیمی چند تھا اور ایک کا نام رمیش تھا. ابھی وہ ہیں سب الگ الگ, کوئی ریٹائرڈ ہو گئے ہیں, بڑے بڑے انجینئر میں پوسٹ ہو گئے. تو میں انہیں بال بودھ پاٹھ مالاؤں کے ساتھ میں نیائے دیپکا اور پریچھا مکھ پڑھاتا تھا, لگو سدھانت کومنی پڑھاتا تھا. وہ کیا پڑھتے ہوں, تو ابھی میں پڑھاتا تھا انہیں, ابھی وہ سب زندہ ہیں. رمیش تو انجینئر ہے, وہ جیسوال تھا, اب یہاں سب کے رشتے دار بیٹھے ہوں گے, ہے نا. وہ پنڈت کیلاش چند جی آتے ہیں نا, جو بینگلور میں رہتے ہیں, ان کا سارا دو پون تھے, ایک پون تو بینک کا آفیسر بن گیا تھا. وہ سب ہیں تمہارے اشوک نگر گنا میں, مسٹر کیا دلی چند میں کیا ہے نا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھیا یہ چیزیں پڑھنے کو کون ملتا ہے. وہ ودیارتھی ہم پہ اپکار کرتے ہیں کہ جو ہم اتنی تم تتو کی گہری بات ہم تمہیں سناتے ہیں, تو ہم کو جو ایسے سوتا ملتے ہیں اچھے, تو بہت آنند آتا ہے اندر سے, سمجھے نا, بہت آنند. وہاں جا کے ہم مرے مرے بیٹھے رہتے ہیں اور گدی پہ آتے ہیں تو نہ معلوم کہاں سے طاقت آ جاتی ہے, اور گدی سے اٹھ کے جاتے ہیں تو پھر پست پڑ جاتے ہیں, کسی سے بات کرنے کی اچھا نہیں ہوتی ایک منٹ. کتنا امرت ہے یہ پانچ, اس سے بڑھیا یہ ہوتے یہ ہوتے یہ ہوتے. ارے وہ تو ہونے کا تو سوال ہی نہیں تھا, لیکن ابھی بھی یہ من میں للچانا اتنی بڑھیا ندھی پا کر کے, کیوں یعنی نہیں ملی, بے پچھتائیں تو پچھتائیں, لیکن جن کو یہ ندھی مل گئی ہے بے بھی پچھتائیں, ان سے ابھاگے اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. میری بہت پکی سچی شردھا ہے, میں کوئی آرٹیفیشل نہیں کہہ رہا ہوں. میں تو اپنے ان بچوں کو, بچوں کے بچوں کو, سب کو بولا, بچے تو اس وقت مہا ودیالیہ تھا نہیں اس لیے نہیں پڑھ پائے, لیکن ساری تیسری پیڑھی کے بچے, ان کو ہی میں نے کہا کہ تم آگے شاستری کرو, پھر دنیا کا جو بھی کرنا ہے کرو. آگے آیا اور ان کو اپنے گھر میں رکھا, اور جتنی بیٹوں کی سیوا نہیں کی تھی اس سے بڑھیا اس نے رکھا. انا جی کو بھی کہا کہ انا جی انہیں زیادہ پریشان نہیں کرنا, نہیں یہ بھاگ جائے گا تو یہ میں ساتھی نہیں بنا پاؤں گا اسے. اب آپ لوگ سوچ نہیں سکتے ہو, میں نے کسی کے لیے نہیں کہا ہوا کسی سے, لیکن زیادہ یہ بھاگ نہ جائے اس ڈر کے مارے میں نے انا جی کو بھی روکا کہ نہیں آتا تو مت آنے دو, یہ تھوڑا چھوڑ دو, لیکن اسے بھاگنے مت دینا, تو جاؤ جہاں جانا ہو, لیکن پہلے یہ پڑھو, پہلے یہ پڑھو, یہ پڑھو, خیر میں آئے نا, اور نہیں پڑھو ان کو ہی رکھا. ایسے بھی میرے پاس آئے کہ یہاں پر میڈیکل کالج میں بھرتی ہو جائے اور وہ تمہارے گھر رہ جائے. میں نے کہا بھائی دیکھو مسٹر, میں نے فیملی پلاننگ تمہارے بچے پالنے کے لیے نہیں کیا ہے, میرے بچے بھی بہت پیدا ہو سکے, چار تو ہیں اور آٹھ دس ہو سکتے تھے, میری ماں کے ہوئے تھے تو کیوں نہیں ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے لیے ایسا بولا ہے, میں نے یہ شبد بولے ہیں کہ وہ لوکک پڑھائی کے لیے میرے گھر میں کسی کو گھسنے کی اجازت نہیں ہے, اور دھرم پڑھنا ہو تو میرے گھر میں آ جاؤ, کوئی بھی اس سے آ کر پڑھاؤں گا میں. یعنی میرے روم روم سے میرے یہ روم بات بسی ہے, میں یہ کہتا ہوں, میں یہ بات کسی سے اس کے لیے نہیں کہتا ہوں, خیال میں آئی نا, اس کے لیے اسی کے لیے میں سارے ودیارتھی جتنے اس سال میں نے تو گھوشنا کر دی ہے کہ ایک یوگ لڑکے کو میں واپس نہیں بھیجوں گا, لیکن ایک ایوگ کو گھسنے بھی نہیں دوں گا. سفارش وفارش یہاں نہیں چلتی ہے کسی کی بھی, تم سوچ بھی نہیں سکتے. بھگوان مہاویر بھی آ کے میرے سفارش کریں تو میں نہیں مانتا, بہت آتی ہیں, لیکن یوگ ہوگا تو میں کسی قیمت پہ چھوڑوں گا نہیں, مجھے بھرتی کروں گا. 50 آئیں گے, 60 آئیں گے, 70 آئیں گے, کالج تو 40-45 سے زیادہ لینے کو تیار نہیں ہے. تو ہم نے سوچا ہے کہ دوسرے کالج میں کریں گے, وہ نہیں ہوگا تو ہم نے یہ بھی پلاننگ کر لی کہ ہم کالج کھولیں گے نیا. کیا لیکن ایک یوگ ودیارتھی کو واپس نہیں بھیجیں گے, کیونکہ اتنی اصلی چیز پوج گرودیو شری کے پرتاپ سے مہابھاگیہ سے اس کی آپ کلپنا نہیں کر سکتے ہیں, یہ اپن کو پراپت ہو گئی ہے, خیال میں ہے نا, یہ پراپت ہو گئی ہے اور پھر ہم اس کی قیمت نہیں کر رہے. میرے جھگڑا ہوتا ہے, ببلو سے ہوتا ہے, پرماتم سے ہوتا ہے, یہ پیوس سے ہوتا ہے, شانتی جی سے ہوتا ہے, کیوں یہ کہتے دادا ہم سمجھاتے ہیں کیا کہ یہ بچوں کو کن کو اس مہا ودیالیہ میں بھرتی ہونا چاہیے. میں نے کہا ہم تم کو نہیں سمجھانے دیں گے, کیوں بھائی ہمیں کیوں نہیں سمجھانے دیں گے, کہ تم کیا سمجھانا چاہتے ہو, سارے راستے کھلے ہیں, کیا سارے راستے کھلے ہیں, تم انجینئر بھی بن سکتے ہو, تم کمپیوٹر انجینئر بن سکتے ہو, تم ایم بی اے بن سکتے ہو, تم چارٹر اکاؤنٹنٹ بن سکتے ہو, جو ہر گریجویٹ کے کھلے ہیں وہ تمہارے لیے بھی کھلے ہیں. یہ تو ہمارے ودیارتھیوں کو بھگانے کی ٹریننگ دینا چاہتے ہیں. یہ بات سچی ہے کہ سارے راستے کھلے ہیں, خاصی گدی پہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا, لیکن مجھے سارے راستے بند کرنا ہے, کھولنا نہیں ہے, مجھے ایک ہی راستہ کھولا ہے, کھولنا ہے مورت کے مارک کا, اس لیے میں وہ اس کی پریرنا نہیں دینا چاہتا. میرے پری ودیارتھی وہی ہیں جو اس کھیتر میں ہیں, جو کھیتر چھوڑ کے دوسرے میں چلے گئے, ان سے بھی میں گھنا تو نہیں کرتا ہوں, لیکن سچ مچ اتنا پریم نہیں کرتا ہوں جتنا ان لوگوں سے کرتا ہوں. میں دکھاتا نہیں ہوں کسی کو پریم, کیوں کہ میں جانتا ہوں پھر میری زندگی مشکل ہو جائے گی. تو وہ بچے ماتھے پہ میرے پتا جی کے بڑے بھائی سے سیکھا, کل تو میں نے پرسن بتائی تھی, ماں سے سیکھا تھا, جو ایک میرے پتا جی کے بڑے بھائی تھے, میں نے ان سے ایک بات سیکھی تھی. وہ بہت بیمار رہتے تھے, ہمیشہ پلنگ پہ ہی بےچارے پڑے رہتے تھے, شادی نہیں ہوئی تھی, انہیں ہوئی نہیں تھی, کی نہیں تھی, دو کے بیچ میں کچھ ہوگا, سمجھ گئے نا, اتنے بیمار تھے. تو ہم لوگ وہ گھر کے مین دروازے پر ان کا پلنگ پڑا رہتا تھا, اور وہیں سے ہم کو باہر نکلنا پڑتا, وہ گھر کے اندر جانا پڑتا تھا, تو ان کے پلنگ کے پاس سے جانا پڑتا تھا. تو وہ ایک لاٹھی رکھتے تھے, لاٹھی میں نے پتلی سی لکڑی ایک رکھتے تھے اپنے پاس, اور جو ہم نکلے اور انہوں نے اٹھائی اور ایسا زور سے ماری, بھاگ گیا. پھر گھر میں آتے تب بھی یہی ناٹک ہوتا, ہم سب بھائی صاحب ہم سب ایسے ڈرتے تھے ان سے, ڈرتے تھے. ابھی ایک دن میرے پتا جی اور ان کی سنواد ہوا, میں نے سن لیا صحیح گھٹنا کا بتاؤں, کیونکہ مجھے غصہ بہت آتا تھا, ابھی کوئی زیادہ کم ہو گیا ہے میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن اس وقت تو بہت ہی زیادہ آتا تھا. تو کوئی گھٹنا گھٹ گئی تھی, میری بہن سناتی ہے وہ رس لے لے کے, وہ میری بڑی بہن آتی ہے نا, وہ سناتی ہے لوگوں کو رس لے لے کر کے. تو اس وقت میرے پتا جی بہت چنتت تھے اور ان سے کہہ رہے تھے کہ اس کا کیا ہوگا, دادا تو شانت تھے تو ان سے تو انہیں کوئی خطرہ تھا نہیں, اس کا کیا ہوگا. تو وہ کہہ رہے تھے ارے تم سمجھتا نہیں ہے, ایک ایسا ہی چاہیے. انہیں کے ساتھ بول رہا ہوں میں نے, سنے دو, ये कैसे चाहिए कि क्यों कि नहीं तो सब खा जाएंगे तुम्हें, ये सारे लोग चारों तरफ हैं, ऐसा समाज है, एक आज ऐसा चाहिए नहीं तो ये सब खा जाएंगे, तुम फिक्र मत कर, कुछ नहीं होगा, चिंता करने की तेरे को बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना प्रेम करके तुम्हें फिर हमको ये विकल्प आया कि ये डंडा लेके रोजीना मारने को तैयार रहते हैं और एक इनको इतना प्रेम है इनके अंदर में, कह रहे सबसे मरिया है ऐसा है ऐसा है, यही तुम्हारी रक्षा करेगा, यही तुम्हारा ये करेगा, ऐसा बता रहे थे। तो हमने पिताजी से पूछा कि ये ऐसा क्यों करते हैं, बोले तो बीमार है ना, तो बीमार है, उनकी ऐसी ताकत नहीं है कि तुमको गोदी में ले सके, वो उठा ले में तुम उनकी छाती पे बैठ जाओ, उनकी मूछें खींचो, ये उनकी ताकत नहीं है, इसलिए वो डंडा लेकर के तुम्हें डराते रहते हैं कि पास में तुम नहीं आओ, डिस्टर्ब नहीं करो, इसके लिए वो एक दिखाते हैं डंडा। लेकिन वो तो, लेकिन हमको उनका प्रेम जब मालूम पड़ता था कि जब एक आध दिन हमारी मम्मी हमको एक आध चांटा मार दे और हम रोने लग जाए, तो मम्मी को 3 घंटा उनकी डांट सुनना पड़ती थी और उस दिन वो रोटी नहीं खाते थे कि तूने मारा क्यों। तो ये मैंने उनसे सीखा है कि कितना ही प्रेम हो लेकिन माथे पर नहीं बैठने देना, दूर सामने से मर के भाग के भाग के जाए, नहीं तो मैं यहां रह नहीं सकता हूं इन 150 बंदरों के बीच में, शांति से मैं रहता हूं, अपना काम करता हूं, लिखता हूं, पढ़ता हूं, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, कहीं भी बैठा रहता हूं, है ना, और मैं सब मैं, लेकिन जितने केस मेरे पास आते हैं तो सब मैं कहता हूं मत निकालो मत निकालो मत निकालो, ये सब अन्ना जी से लेके बड़े दादा से लेके शांति जी से, दादा आप समझते नहीं कितना नालायक है, हमें कितना परेशान करता है, ये करता है ये करता है, अरे भाई उसे पूरा ये सब शास्त्री एक दफ अपने आ गया तो हो जाने दो ना, करो उसे बाप को बुलाओ, कुछ करो, ये करो करो, है ना, ये अंतिम कोशिश तक ये करता हूं कि वो यहां रहे किसी भी तरीके से और पढ़ के वो शास्त्री होके वो संस्कार लेके जाए, लेकिन मेरे सिर में दर्द ऐसा नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है वास्तव में चीज क्या है, असली चीज आप ये समझाओ, मैं बोलता हूं ये समझाओगे इंजीनियर बनाने का लोभ तो नहीं दोगे, धंधा पानी तो नहीं सिखाओगे, उसका लोभ तो नहीं दोगे, तो मैं तुमको देता हूं लोग समझाओ, इस शर्त के साथ इनको थोड़ा बहुत समझाने देता हूं, मुझे वो रास्ते सब खुले हैं लेकिन रास्ते मुझे बताना नहीं है, मुझे तो ऐसे विद्यार्थी चाहिए कि जो यहां आकर और पूरा जीवन इसमें लगाएं और मेरी तरफ से वस्तु की स्वरूप की तरफ से गारंटी है कि वे भूखों नहीं मरेंगे, कोई तकलीफ होने उनके जीवन में नहीं होगी, सब तरह की अनुकूलता रहेगी, लेकिन करोड़पति नहीं बनेंगे, इतना भी नक्की समझ लेना है क्यों, इतनी बात है, इसलिए ऐसे विकल्प आ गया मुझे, अभी बस आ गए हैं मेरे पास कम से कम 150 विद्यार्थी आ गए हैं और कल परसों से उनके इंटरव्यू शुरू होंगे, हैं शुरू हो गए अभी हमारे कई लेवल से निकलेंगे, वो पहले हमारे धर्मेंद्र हैं और वो हैं जो सोनू वगैरह हैं उस लेवल से निकलेंगे, फिर वो शांति जी की वगैरह इनके लेवल से निकलेंगे, अन्ना जी देखेंगे, देखते देखते तब लास्ट में हमारा नंबर आएगा, तब देखेंगे, तब उन्हें हम देखेंगे, भर्ती करेंगे। इसलिए बताना चाहता हूं कि अब समझ लो कि तुम कहां भर्ती होना चाहते हो, क्यों आना चाहते हो, कहां आना चाहते हो, ये तुम सोच लो अच्छी तरीके से, आना अवश्य आना, हम जरूर रखेंगे, एक भी योग्य विद्यार्थी को वापस नहीं करेंगे, लेकिन सचमुच तुमको ये जैन दर्शन प्यारा हो, इसमें सच्चाई इसको तुम्हें लगती होगी, ये परम सत्य है, इसमें ही अपना और पराया कल्याण करने की भावना हो, तो निश्चित रूप से आना और हम तुमको पूरी मेहनत करके पढ़ाएंगे और हर तरह की सुविधा देके रखेंगे, इलाज कराएंगे, सब करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी, लेकिन रखेंगे, रहना पड़ा, एक काम में होने तो रहना, अन्यथा नहीं।